आज अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे आसान काम में से एक क्या है, निसंदेह बहुत लोग कहेंगे फोटो लेना। इधर मोबाइल निकाला और तुरंत फोटो क्लिक कर ली। आज भले हम मोबाइल फोटोग्राफी करते समय इस विषय पर अधिक न सोचें, लेकिन फोटोग्राफी ने भी एक यात्रा तय की है। रील कैमरा, पोलोराइड कैमरा, डिजिटल कैमरा, मोबाइल कैमरा और अब अत्याधुनिक कैमरे। लेकिन जब ये सब अत्याधुनिक कैमरे नहीं थे तो फोटो कैसे करते थे? फोटोग्राफी तब एक महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। 60-70 के दशक में तो फोटो खिंचवाने पूरा परिवार स्टूडियो जाता था। अच्छी तीर्थ यात्रा पर गए या ऐतिहासिक जगह पर घूमने गए तो वहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफर मिल जाते थे जो फोटो खींच कर देते और फिर उसको फ्रेम करके परिवार दीवार में टांग देता। अब ये सब खत्म हो गया है। फोटो अब झटपट मोबाइल से क्लिक हो जाते हैं। इनसे पहले एक मिनट होल कैमरा प्रचलन में था, अब वो शायद ही कहीं पर चलता हुआ मिले। वो कैमरा पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट था, एक लकड़ी का डिब्बा जिसमें काले रंग का कपड़ा होता था। इसमें आगे लेंस और पीछे उस लकड़ी के डिब्बे में पूरी प्रोसेसिंग यूनिट थी। वहीं पर फोटो क्लिक होने के बाद केमिकल से डिब्बे के अंदर ही प्रोसेसिंग होती थी। पूरा कैमरा एक काले कपड़े से ढका रहता था और उसमें सर डालकर फोटोग्राफी होती थी। जयपुर के रहने वाले टीकम चंद इसी प्रकार के मिनट कैमरा का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। वो जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों के बाहर अपने कैमरे के साथ उपलब्ध रहते हैं और टूरिस्ट की फोटो खींचते हैं। बहुत से लोगों, विशेषकर विदेशियों के लिए उनका कैमरा कौतूहल का भी विषय रहता है। टीकम चंद तीसरी पीढ़ी हैं जो इस कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं। उनके दादाजी, फिर पिताजी और अब वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बिरला कैमरा है। टीकम चंद कैसे इस कैमरे के प्रति आकर्षित हुए, उन्होंने SBS को बताया।
पहले शुरू में मेरे दादाजी से शुरू हुआ, ये मतलब स्टार्ट फोटोग्राफी जो हुई है, मेरे दादाजी लगाते थे जयपुर में हवा महल के नीचे। उनका नाम था मिस्टर पहाड़ी मास्टर। उन्होंने कम से कम 34-35 साल उन्होंने काम किया। उसके पश्चात मेरे पिताजी मोहनलाल मास्टर ने काम किया, उन्होंने भी कम से कम 30-31 साल काम किया। फिर उसके पश्चात हुआ क्या कि मैं स्कूल में जाता था तो पिताजी के लिए टिफिन देने जाता था, लंच बॉक्स जिसे बोलते हैं हम। तो कहने का मतलब यह है कि जब लंच बॉक्स देखने जाता था तो मैंने जयपुर का स्वरूप पहली बार देखा, जो पिंक कलर में नजर आया मुझे। और मेरी आंखें इस तरीके से वो हो गई कि मैं एक कुछ कह नहीं सकता। एक तो मैं अपना घर देखता था, दूसरा फिर मैं पहली बार सिटी में गया तो सिटी को जब मैंने देखा तो मुझे एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा भी हमारा शहर दिखता है। तो फिर उसके पश्चात मैं देखने के पश्चात फिर कैमरे को देखा तो कैमरे की जो एक्टिविटी, जो फादर जब फोटो लेते थे तो उनकी एक्टिविटी मैंने देखी, तो एक्टिविटी देखने के पश्चात मेरे भी दिल में एक ऐसी उमंग हुई, क्या मेरा भी चेहरा ऐसा आ सकता है। तो जब मैंने कस्टमर का चेहरा देखा तो फिर मैंने अनुमान लगाया कि हाँ, मेरा भी चेहरा ऐसा आ सकता है। तो क्या दुनिया में चेहरे से चेहरा भी बन जाता है? तो फिर उसका दिमाग में ऐसा बताया। फिर मैंने फादर से पूछा तो उन्होंने बोला कि इसे फोटो ही कहते हैं बेटा, यही फोटो आती है जो हम फॉर्म वगैरह में फिलिप करते हैं और लोगों को फोटो खींच के उनका एंजॉय पूरा करते हैं। इस तरीके का मेरा ये दौर शुरू हुआ। फिर मैंने दिमाग में ऐसा बैठा लिया कि शायद, ये सोचता रहा कि यार मैं भी इस पे काम करूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी लोग पसंद करेंगे, मुझे भी लोग अच्छा कहेंगे। अचानक एक दिन एक कस्टमर आया, मैंने बाबूजी से कहा मुझे भी सिखा दो। बाबूजी मुझ पर बहुत नाराज हुए कि ये फोटोग्राफी आने वाले समय में बंद हो जाएगी। क्या पता उनके दिमाग में ऐसा क्यों था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस फोटोग्राफी के लिए नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो दिमाग में बैठा लिया, नहीं मैं तो करूंगा शायद। एक दिन मैं लंच लेके फिर वापस गया तो उनकी एक्टिविटी देखता रहा। एक्टिविटी देखने के पश्चात तो मेरे दिमाग में ऐसा रहा कि ये बाबूजी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और इस आगे जो एक कैप होती है लेंस के ऊपर उसको यूं करके टाइमिंग वगैरह उन्होंने देते थे। तो फिर मेरे दिमाग में ही मैंने ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने उस तरीके से उनका सीख लिया। तो बाबूजी लंच बॉक्स लंच करके और जैसे ही पानी पीने गए, तो कोई जमाने में हमारे इंडिया के अंदर प्याऊ होती थी तो वहां जाके पानी पीते थे। वो कुएं का पानी बहुत ठंडा आता था, उस पानी को जाके पी रहे थे वो। इतनी देर में कस्टमर आ गया, मैंने उसकी फोटोग्राफी कर दी। तो 3 कस्टमर खड़े हुए थे, बाबूजी ने कहा कि बैठिए। बोले जी हमने तो फोटो बनवा भी ली, आपके बेटे ने बना दी। बोले बेटे ने कैसे बना दी? तो मैंने जब उसको बना के पानी में रखा तो वो फोटो ऐसी लगी जैसे वास्तव में मैंने फोटो खींच दी। एक्सपोजिंग वगैरह ये सब कुछ इस तरीके से दिया। बाबूजी बड़े नाराज होकर मेरे उन्होंने थप्पड़ कर दिया, बोले तुमने कैसे सीख ली फोटोग्राफी, तो किससे सिखा दी? तो वो मेरा एक अलग से एक एक्सपीरियंस था, तब मैंने शुरू की फोटोग्राफी। और फिर बाद में जाके वो घर पे मदरसे कहने लगे इसका लंच बॉक्स लेके मत भेजिए क्योंकि ये फोटोग्राफी बंद हो जाएगी, ये पढ़ेगा तो आगे कुछ करेगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में जाएगा। इस तरीके से उन्होंने मेरा मनोबल गिरने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरा मनोबल गिरा नहीं और मैंने इस फोटोग्राफी को शुरू कर दी।
वैसे ये कैमरा कब का है कोई पक्की जानकारी टीकम चंद के पास नहीं है, 150 से ज्यादा साल से तो ये इन्हीं के परिवार में है। एक विदेशी टूरिस्ट ने इनको बताया था कि ये कैमरा 1860 के आसपास का है क्योंकि तब ऐसे ही कैमरे प्रयोग होते थे। इस कैमरे में कार्ल ज़ेईस का लेंस लगा हुआ है। इसके केमिकल्स भी एक विदेशी टूरिस्ट ने टीकम चंद को उपलब्ध कराए क्योंकि अब यहाँ मिलना कठिन होता जा रहा है। लगभग 150 साल पुराना हो चुका यह कैमरा, अब कहीं नहीं दिखता है।
मैंने इसको विरासत में मेरे दादाजी से प्राप्त की है। दादाजी कहाँ से लाए थे, कब लाए थे, इसका मुझे अंदाज नहीं। कनाडा से एक श्रीमान आए थे लॉस एंजलिस संपादक, उन्होंने इसका नाम बताया कि ये 1860 का कैमरा है और इससे कम नहीं है क्योंकि इनके दादाजी ने इतने लंबे समय से काम किया, फिर इनके पिताजी ने शुरू किया और ये 2009 की बात है और मैंने भी 2009 में कोई 25-1 साल पूरे कर लिए थे। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि यार ये कैमरा 1860 के नीचे तो नहीं है, 150 साल से तो नीचे नहीं है ये कैमरा और काफी लंबे समय से इनके परिवार के पास है। तो दादाजी के पिताजी भी शायद करते थे, दादाजी पिताजी ने तो कुछ ऐसा बताया नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि शायद इस तरीके से उन्होंने भी किया था। तो कहने का मतलब लॉस एंजलिस ने मेरे से इस प्रकार की बात पूछी, फिर उन्होंने लिख के भिजवाया कि नहीं हमने इसको कुछ देखा है, ये वास्तव में 1860 का कैमरा है और इसका लेंस दादाजी से लेके आज तक कार्ल ज़ेईस का वही लगा हुआ है और वो चल रहा है। और इसकी खासियत यह है सर कि उस जमाने का, आज जो डिजिटल युग है तो ये उस जमाने का डिजिटल था। इस कैमरे की खासियत ये रही है कि इसी कैमरे के अंदर डार्क रूम है, इसी कैमरे के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट केमिकल रखते हैं जिसकी एक डिश होती है, एक साइड में फिक्सर होता है वो रखा जाता है, फिल्म बॉक्स होते हैं वो किया जाता है, इसकी इमेज अपसाइड डाउन आती है और आगे से हम इसको फोकस करते हैं, फोकस करने के पश्चात हम टाइमिंग उस पर डाल देते हैं जो अपर्चर कहते हैं हम, तो फिर उसका टाइमिंग हमें पता होता है कि लाइट में हमें कितना देना है, मॉर्निंग में कितना देना है, आफ्टरनून में कितना देना है और लास्ट में कितना देना है। तो उस जमाने का डिजिटल कैमरा ये था, तो इसका पेपर पे नेगेटिव आता था, पेपर पे पॉजिटिव आता था। एक स्टूडियो जो हमारे नुमा स्टूडियो हुआ करते थे जिसमें फिल्म रोल वगैरह रोली फ्लैक्स रोली गार्ड के कैमरे हुआ करते थे, पेंटेक्स हुआ करता था, कैनन के हुआ करते थे, मिनोल्टा से हुआ करते थे, तो फिल्म रोल से स्टूडियो में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब बनती थी तो वो जब तक रोल पूरा नहीं होता था तब तक उस पर हम फोटो नहीं बना सकते थे। डायरेक्ट रूम हुआ करते थे स्टूडियो के अंदर, फिर उसमें जाते लाइट रेड लाइट होती थी, एनलार्जर होते थे, स्लाइडिंग होती थी और फिर उसके बाद उसकी फोटोग्राफी हुआ करती थी। अच्छा, तो उस नेगेटिव की भी जो प्लास्टिक की नेगेटिव आती थी फिल्म रोल वाली, उसकी भी हम टचिंग करते थे और टचिंग करने के पश्चात हम उन फोटोओं को उसको एनलार्जर पर लाते थे और एनलार्जर पर लाने के पश्चात फिर हम स्टूडियो का वर्क उस पर करते थे। किया मैंने भी है वो वर्क, कलर फोटोग्राफी भी ब्लैक एंड व्हाइट से किया करते थे और इससे भी अब फिर बाद में धीरे 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 ये युग एक समाप्ति की ओर तो होता गया, तो कोडक फिल्म वगैरह जो थी जो हिंदुस्तान में बंद हो गई उस कगार पे मैं आके खड़ा हो गया कि मैंने निराशा हासिल हुई कि बाबूजी ने वास्तव में सही कहा था कि भाई ये फोटोग्राफी बंद हो जाएगी। तो मैं इस पे यूं टिका रहा, फिर काफी नर्वस रहा, मैंने कई धंधे चेंज किए, मैं सक्सेस नहीं हो सका, फिर आखिरकार मैंने हताश होकर बैठा रहा। फिर एक दिन एक फॉरनर आए थे, उन्होंने कहा कि आप इसकी अब केमिकल वगैरह की व्यवस्था कहाँ से कर रहे थे? मैंने कहा सर अब लास्ट स्टेज पे चल रहा है, मैं भी थक गया हूँ आर्थिक स्थिति से। और फिर उन्होंने कहा नहीं, आप इसको बंद नहीं कीजिए, आप इसको चालू रखिए, आपको जो कुछ चाहिए हम भिजवाएंगे। फिर उन्होंने भिजवाया था, फिर धीरे धीरे ये रेगुलर चलता रहा। फिर कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट होता रहा, करता रहा, तो ये फोटोग्राफी चलती रही।
वैसे टीकम चंद की ख्वाहिश है कि अपने घर पर वो एक स्टूडियो बनाएं और इस कैमरे को वहां रखें। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस कैमरे के कारण इनकी प्रसिद्धि भी है। कई फिल्म जैसे अक्षय कुमार की भूल भुलैया में इनको छोटा सा रोल इसी कैमरे के कारण ही मिला था। अगर आप भी जयपुर जाएं तो हवा महल के सामने आपको टीकम चंद अपने 150 साल पुराने कैमरे के साथ दिख जाएंगे। एक फोटो जरूर क्लिक करवाइएगा, क्योंकि ये बस एक निशानी बची है और जल्द ही शायद लुप्त हो जाए। लखनऊ से फैसल फरीद।